نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قم فانذر اٹھئے اور آگاہ کیجئے. آج کا ہمارا ایک شارٹ سا لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک حصہ بنا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ ہمارے اس جوہر آباد کے اس ابو بکر کیمپس کو اللہ نے احساس دیا کہ یہ یہاں سے لائیو لیکچر آ رہا ہے. اور ہماری اس سیریز کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آج ہمارے نصیب میں تھا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا ایک سلسلہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب قرآن نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تو بات پوری ہوئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تھے ربیع الاول کی کسی بھی تاریخ کو, اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا وہ کیا تھی. ابو لہب نے خوشیاں منائی تھی جو آپ کا چچا تھا, اور ابو طالب باپ بن کر, چچا نہیں باپ بن کر آپ کے سامنے رہے. اور وہ لونڈی سویبہ نام کی جس نے پیدائش کی خبر دی اس کو ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا. اور عبد المطلب جو دادا تھے ان کی ایک ہی پکار تھی کہ میرے اس بچے کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بیبی محمد تھے یا بوائے محمد بن گئے, ایک لڑکے بن گئے, ان کو وہ اختیارات حاصل تھے جو دوسروں کو نہیں تھے. وہ کعبہ کے اندر بچھی ہوئی اس مسند پہ بھی بیٹھ جاتے تھے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ عبد المطلب ان کے بہت لاڈ دیکھتے تھے. اتنی محبتوں سے پیدا ہوا آنکھوں کا تارا وہ بچہ کہ جس کا باپ نہیں. آپ سب جانتے ہوں گے, کسی نہ کسی فیملی میں یہ تجربہ ضرور ہوا ہوگا کہ جب باپ کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ پھر ایک آنکھ سے رونے اور ایک آنکھ سے ہنسنے والی کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ صادق اور امین کہلانے کے بعد, بڑے بڑے معاملات میں منصف بننے کے بعد, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہونے کے بعد, جب 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈھلا اور اقرا بسم ربی کا والی آیات سے نبوت کا تار جڑا, تو پھر وہ کچھ ہوا کہ جو جب زندگی میں جس کے ہوتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے. بڑا ہی خوبصورت تجربہ بھی تھا, جو امیزنگ بھی تھا, جو آپ کو ایک روحانیت کبھی کسی قرآن کی محفل میں ملی ہو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اس کو لے کر گھر جاتے ہیں اور ذم ملونی کی بات کرتے ہیں. اس وقت تو وہ جبرائیل کا آنا اور آپ کو بھیجنا بڑی چیز لگا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فرشتہ نہیں آیا, کئی دن نہیں آیا. اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہتے تھے, طلب پیدا کرنا چاہتے تھے. اور میں نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, تھوڑا سا چکھا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب خدا میں بہت پیچھے لگ کے تو کسی کو بھی نہیں کہتی, لیکن جن کو بھی کہوں, اور میں نے کہتی بس ایک دفعہ آپ میرے کہنے پہ قرآن کی کسی محفل میں آ جائیے اور بیٹھ جائیے, سفیل الجنہ ہے تو جوائن کر لیجیے, پھر چھوڑ دیجیے گا. اور جو ایک دفعہ آ جائے اور سن لیں, مجھے اس کے بعد بالکل قطن کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ ہے بھی کہ نہیں. اب میں کہتی ہوں حجت مل گئی, اب اللہ نے اس کو دکھا دی ہے, آ جائے گا وہ. اللہ خود کہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر خیر دیکھے گا نا تو تمہیں ضرور سنوائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اس عرصے کو فطرت الوحی کہتے ہیں. اب اس وقت تفسیر کی بات نہیں ہے, میں صرف آپ کو اس جائے المدثر پہ لانا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مس کرنے لگے, کیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ آپ کئی دفعہ پہاڑ پہ چلے جاتے, اور اتنی گھبراہٹ تھی کہ آخر وہ فرشتہ دوبارہ کیوں نہیں آ رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی کہیں سے آپ کو کوئی ایک سلاٹ کوئی مل جائے کوئی سننے کا, اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کی طلب لگ جائے لیکن آپ اس کو پا نہ سکے. لیکن بالآخر مفسرین کی ایک رائے کے مطابق جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ یا یوہل مدثر یا پھر کچھ کہتے مزمل تھی. जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया कि या अय्युहल मुद्दसर, ए चादर लपेट कर सोने वाले। मुद्दसर दुसर से है और दुसर कहते हैं चादर को, ओढ़नी। कोई भी चादर जो लिपटती है, अगर आप उसको जहन में रखिए तो आप उस चीज़ को महसूस करेंगे। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, कुम फअंजिर, आप उठिए और लोगों को खबरदार कीजिए। यानी आप सोने के दिन गए, आराम के दिन गए, अब काम के दिन है। इसलिए कि ये दुनिया काम की जगह और आखरत और कब्र आराम की जगह। कहते हुए आयत इतनी खूबसूरत, या अय्युहल मुद्दसर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतअख्खर व रुज्ज़ फहजुर, इतनी मेलोडियस आयते हैं और इतना इसमें लफ्जी फ्लो है, खूबसूरती है। लगता ये है कि बस मज़ा आ गया, कोई मीठी मीठी लोरी है, लेकिन हकीकत में ये चंद आयते और उसमें से आज दो लफ्ज कुम स्टैंड अप फअंजिर, और लोगों को खबरदार कीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये कठिन जिम्मेदारी है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि उठिए और लोगों को डराइए, गफलत में पड़े हुए लोगों को जगाइए, कुरान के जरिए लोगों को खबरदार कीजिए। और इससे पहले सूरत मुज़म्मिल की इब्तदाई आयात नाजिल हो चुकी थी, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला, ऐ रातों को सोने वाले, ऐ मुज़म्मिल ओढ़ कर लेटने वाले, उठिए और रात के कुछ हिस्से में क़ियामुल्लैल कीजिए। सारी सारी रात आप खड़े रहते हैं, फरमाए सारी रात खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। निसफ़हु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला, आधी रात या फिर कुछ, कभी दो तिहाई, यानी कभी आधी रात, कभी तिहाई रात, कभी दो नफिल पढ़ लें, कभी चार पढ़ लें, कभी छः पढ़ लें, कभी आठ पढ़ लें, जितना दिल करता है, लेकिन उठिए। क्या पता चला? सबसे पहले क़ियामुल्लैल, और अब इस सूरत में सूरत मुज़म्मिल के क़ियामुल्लैल के मुकाबले में क़ियामुन्नहार। क्या पता चला? रात को रब के सामने गिड़गड़ाना, अल्लाह से मदद मांगना, अपने सारे दिन के गिले शिकवे, लोगों की बातें, नाराजगियां, गुस्से, झगड़े, ये पेश करना, रात को रब से दुख सुख करना, रब से दिल की बातें करना, रब को अपने दुखड़े सुनाना, रब के सामने अपनी महरूमियों, कमियों की दास्तानें खोल खोल कर बयान करना, और दिन में कुम फअंजिर, रात में क़ियामुल्लैल और दिन में क़ियामुन इंज़ार, रात में खड़े हो जाए। एक शख्स जो किसी जंग में मुसलमानों के मुकाबले पे था, कुब कुलाफ उसका नाम आता है, जब रात को अंधेरे की वजह से दोनों तरफ की फौजें अपनी कुछारों में चली गईं, तो इसने सोचा कि आज मैं लश्कर इस्लाम का जायज़ा लेता हूँ। भला ये करते क्या है, रातों को क्या करते? वैसे भी जासूसी होती है CID। और जब गया तो लश्कर इस्लाम के करीब उसको शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आने लगी। जब कान लगा के सुना तो अल्लाह के रास्ते के सिपाही अल्लाह को रात में कुरान सुना रहे थे बिन बनाहट। इतनी उसके दिल पे मरूबियत तारी हुई कि वहाँ से वापस आके अपनी फौज को इकट्ठा करके कहता है कि ये अजीब लोग हैं, फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल, दिन को घोड़ों की पुश्तों पे बैठे हुए शख्स सवार बन जाते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हैं, और रात को रुहबानुम फिल लैल। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में सहाबा की खूबियों में क्या कहते हैं, रुहमाउ बैनहुम और शिद्दतुल कुफार, मोमिनों पर नरम और गैर मोमिनों पर सख्त। और सूरत मायदा में क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वला तखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो नहीं डरते, क्योंकि जो बंदा अल्लाह की पहचान रखता है ना, जिसको मार्फत रबी हो जाती है ना, उसके लिए लोग छोटे छोटे बोने, डमीज, हैंगमैन्स, बडावे, वो पंजाबी उर्दू में क्या कहते हैं, छोटे छोटे बडावे, पुतलियां, ऊपर से डोरियां कोई और हिलाता है। वल्ला ही, जिसको अपने रब की पहचान हो गई, असल जीना उसका जीना। तो आपने ये जो कुरान पढ़ा है ना, इस कुरान ने आपको मारफत रब्बी अगर दे दी है, आपका कुरान जिंदा हो गया, आप 5 नमाजों में जो कुरान की सूरतें पढ़ते हैं अब उसका तर्जमा समझ आने लगा है, सूरत फातिहा पढ़ते हुए रो पड़ते हैं, सूरत बकरा पढ़ते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे मैं उर्दू में कोई सूरत पढ़ रही हूँ, तो शुक्र का सजदा कीजिए, ये आपके रब की मार्फत आपको हो रही है। अब कुरान तो आपने पढ़ लिया, आपको सूरत फातिहा से नास तक तर्जमा याद करवा दिया गया, कच्चा पक्का भी है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, टेस्ट आपने दे दिए, असाइनमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब आगे क्या है, आप देखिए कि एक शख्स मेडिकल कॉलेज में जब जाता है 5 साल पढ़ने के बाद, फिर उसको कोई हॉस्ट जॉब देते हैं, फिर कुछ और बाहर के प्रैक्टिकल कर करा के कोई 10-12 साल के बाद वो एक मरीज को चेक करने के काबिल होता है। अगर एक शख्स डॉक्टर बन के घर बैठा रहे, या उसको ये पता ही ना हो कि मैंने इस कोर्स के बाद करना क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका मेडिकल की बुक्स पढ़ने का। यही चीज़ आप पायलट बनने वाले के लिए कह लें कि जहाज ही नहीं चलाना तो इतनी सारी ट्रेनिंगों में से गुजरने का क्या फ़ायदा। तो क्या पता चला, मेडिकल कॉलेज से लोग डॉक्टर बन के निकलते हैं, लॉ कॉलेज से लोग लॉयर बन के निकलते हैं, कुरान पढ़कर आप क्या बनेंगे। ये सवाल अपने से आज लिखिए। मैंने एक कोर्स किया और कोर्स के बाद तो बंदा कुछ बनता है, कोई काम मिलता है, वो काम क्या है। कौम फअंजर, बे लॉस दावत, और वम ममायन फौनासु फयमकुस। सूरत इब्राहिम में आप पढ़ कर आए हैं कि जो लोगों का नफा देता है वही बचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत 1452 में है, कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए, और इसी तरह से बेहतरीन लोग वो हैं जो अनफा नफा दे लोगों को। तो जब आप कुरान पढ़ने की तरफ आए, जिस दिन आपने इस कोर्स को साइन अप किया, आपकी जिंदगी का ये दरवाजा खुल गया, आप बेहतरीन लोग बन गए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान में वअल्लमहु, फिर आपने मेहनत की कुरान के एक एक लफ्ज़ के साथ, आपने नेकियां कमाई। तर्जमा जब नहीं याद होता था तो आप झुंझलाते थे, नहीं मुस्कुराए, इसलिए नहीं याद हो रहा कि बार बार पढ़ूं और हर दफ़ा पढ़ने की 10 नेकियां लूं। मुबारकबाद है वो लोग जिनके हाफ़िज़े अच्छे नहीं हैं, काबिले तारीफ है वो लोग जिनको तर्जमा ही नहीं था याद होता, और आप में से काबिले रश्क है वो लोग जिनके बीवी तजवीद कोई नहीं ठीक हुई या 10% हुई है, और वो लोग तो गले लगाने के काबिल है जिनको अभी सारी बातें तफसीर की समझ ही नहीं आई। क्यों? तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप एक दफा कुरान के इस सफर से गुजरने के बाद आप डॉक्टर बन गए, तो फिर वही बात है कि मेडिकल कॉलेज के शुरू के 2-3 सालों के बाद कोई बंदा अपने आपको डॉक्टर समझ ले, जबकि अभी उसने एनाटॉमी भी नहीं पढ़ी। शुरू के सब्जेक्ट्स में तो जनरल बॉडी पढ़ाते हैं, अभी तो उसने कितनी मेडिसिन के नाम ही नहीं याद किए जो आखिरी सालों में आपको याद कराने हैं। तो क्या पता चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इसके बाद हमें फिर कुरान पढ़ना पड़ता है। पहले तालीम, फिर ताल्लुम, सीखने के बाद सिखाना ज़रूरी है। और ये जो आपने कुरान का इल्म लिया है और ले रहे हैं ना दिन रात, लिख लें एक जुमला, इल्म या तो अमल में ढलता है या तकवा में, वरना इल्म रुखसत हो जाता है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, खाना खाया दोपहर में, जहाँ जो टाइम में आप लोगों ने खाना कुछ खाया ना, उस खाने को खाने के बाद क्या किया, घर का काम किया, चले फिरे, नमाज पढ़ी, ताकत आई ना, तो खाने से आपके जिस्म में एनर्जी मिली। अगर आप खाना खाते रहे खाते रहे और खाएं भी फैटनिंग फूड और काम ना कोई करें, तो क्या होगा, चर्बी बनेगी, चिकनाई होगी ना, तो मैं एक जुमला बोलती हूँ, जरा सोच के बोलूंगी और आप भी लिख लें। या तो हमारा खाया हुआ खाना ताकत में बदलता है, काम करते हैं उससे, या चिकनाई यानी फैट में ढल जाता है। कहीं तो ज्यादा है ना उस खाने ने, ज़ाहिर है जब आप यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फिर जमा होता जाएगा ना। इस मिसाल को सामने रखते हुए आप दोबारा जुमला सुनिए, एल या तो अमल में ढलता है या तकवा में, वरना इल्म रुखसत हो जाता है। अमल में कैसे ढलता है? जो सीखा जो पढ़ा उस पर अमल करना शुरू कर दिया। और तकवा में कैसे ढलता है? अभी अमल में तो नहीं पूरा ढला, लेकिन अल्लाह का डर पैदा हो गया। अगर किसी का अमल बदल जाए तो वो सबको दिखने लग जाता है, फौरी अपेरेंट चेंज। लेकिन तकवा आते आते टाइम लगता है। लेकिन ये याद रखिए कि इल्म अमल को पुकारता है, और जब वहां से जवाब नहीं आता तो वो रुखसत हो जाता है कि मैं नहीं जाता अंदर। आप सबने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ने आपसे करवाई है, किसी ने कम भी की होगी। आप में से कुछ ने जरूर कुछ क्लासें छोड़ी होंगी या उनसे छुट्टी होंगी। कितने लोग हैं? खुद से पूछिए, सवाल लिखें। आप इतने लोग माशाल्लाह जो इस वक्त भी आप सुन रहे हैं, और आपने जो ये कोर्स किया है, एक लंबी लिस्ट है इस कोर्स में स्टूडेंट्स की। और कोरोना के बाद जो पहला कोर्स शुरू हुआ था 18-19 के बाद 20th, तो अमेजिंग अमेजिंग एनरोलमेंट हुआ था SJ20। उस वक्त से बढ़ता ही गया, यानी 19 में इतने लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए थे SJ में। और जब ये कोर्स के एडमिशन फॉर्म्स आ रहे थे ना, तो हमें बार बार लग रहा था कि ये दौरा कुरान की रजिस्ट्रेशन आ रही है या सुनील जिन्ना की, क्योंकि दौरा कुरान हर साल हजारों लोग रजिस्टर करते हैं, कई हजार, क्योंकि लाइबिलिटी कोई नहीं, चलो रजिस्टर कर लेते हैं, कुछ रीडिंग मटीरियल आ जाएगा, कुछ होगा। लेकिन SJ का कोर्स तो बड़ी जिम्मेदारी से करने वाला है, लेकिन हजारों में आप लोगों का एनरोलमेंट आकर मैं खुद हैरान थी कि ये कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जमे हुए, और अल्लाह ताला आपको जमाए रखे। कुछ परसेंट जरूर कहीं ना कहीं लुढ़के होंगे, वो क्रिस क्रॉस जो जिंदगी में आया होगा ना, उसमें आप जरूर लुढ़के होंगे। तो यहाँ बैठकर आप सारे जितने भी लोग इस वक्त एज अ स्टूडेंट कोर्स में रजिस्टर थे, वो अपने आप से पूछे, मैंने वाकई कोर्स पूरा किया? चंद सवाल, क्या वाकई आज मेरे कोर्स की तकमील है? दूसरा सवाल लिखिए, क्या मैंने फातिहा से लेकर नास तक पूरा कुरान पढ़ा? अगला सवाल लिखिए, जो क्लास कभी किसी मजबूरी में मेरी छुट्टी या जितनी छुट्टी, क्या मैंने उसको मेकअप कर लिया था? क्या मेरा कोई टेस्ट पेंडिंग तो नहीं? क्या मेरा कोई असाइनमेंट पेंडिंग तो नहीं? क्या मेरी ग्रुपिंग पूरी है? क्या मैंने अमानतों को पूरा किया? ये है इल्म अमल में ढल रहा है या तकवा में ढल रहा है, वरना रुखसत हो जाएगा। इंसान मजबूर है, कई दफा ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे थे पूरा नहीं कर सके, कोई बात नहीं फिर कर लेंगे, कोई मौका आखिरी नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अब आपने जिस भी दर्जे पे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए आज तो मौजूद है ना। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो कोर्स साइन अप कर देते हैं वो उस कोर्स को करने के वक्त पे तो मौजूद थे, तो जब उधर से फ्रूट का वक्त आएगा, आगे जाने का वक्त आएगा, तो फिर वो होंगे कि नहीं? फायदा किसका होगा? आखिर वाले का। आप इसे सब ने पहले दिन से कोर्स शुरू नहीं किया होगा, ये 100% मुझे भी पता है और आपको भी पता है। किसी को किसी के जरिए लेट पता चला, कोई आप में से वो भी होंगे जो पहले पारे की तकमील के तोहफे हैं, कुछ अपनी किसी दोस्त के कहने पे सूरत बकरा की तकमील पे ऐड हुए, फिर 5 पारों की तकमील पे कोई आया होगा, फिर कोई DQ 21 सुन के आया होगा, जब उनको पता चला कि हमने तो कोर्स लेट शुरू किया, चलो फिर हम इसको शुरू कर लेते हैं, कोई ना कोई होगा। मैं आप में से कुछ साथियों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन मेरा सदका जारी है वो जरा वन लिखे, जिसने कभी भी कहीं मेरे से सुन के, मैंने खुद कहा किसी ट्रिप में, किसी सफर में, और फिर ये कोर्स है, ये तो सारे वन लिख रहे हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि आप मेरे सदका जारी हो, मेरे कहने पे कुरान पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ये लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए ये क़यामत के दिन की गवाहियां जब बनेंगी ना, तो मज़ा उस दिन आएगा जाकर। अब आपने जो सीख लिया, अल्लाह का शुक्र है, आप में से हर एक की सलाहियत फ़र्क है, आप में से हर एक के घरेलू हालात फ़र्क है, आप में से हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपके हर एक को की शाकिला फ़र्क है, इट्स ओके। ये बताइए कि इन 30 पारों में से कभी पहले से लेके, अभी 30वें का तो आया भी नहीं होगा, कभी आपके यहाँ रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कभी आज तक तذکرہ हुआ इस प्लेटफॉर्म पे? कभी आपको कोई शील्ड, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कोई ट्रॉफी इस प्लेटफॉर्म से मिली है? अल्लाह के बंदों तो फिर भी लगे हुए हो, कुछ नहीं मिला इनको, प्यार मिला, मोहब्बत मिली है, फूल मिले हैं, दुआएं मिली हैं, जी कहना आ गया, ये चीज आपको जोड़ रही है। मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए कभी लोगों को सर्टिफिकेट्स मेरे इख्तियार में हो, कभी मैंने सब कुछ किया है पढ़ाने से मुतल्लिक, शुरू में जो भी होती है ना, शुरू भी खुद किया, जो भी सिलसिला कहीं भी किया ना, रिसेप्शन पे भी बैठना गवारा किया, सफाई भी की, माइक सिस्टम भी खुद देखा, टेक्निकल भी खुद किया, पढ़ाया भी खुद, जाके दरवाजे भी खुद खोले शुरू में, लेकिन एक काम मैंने आज तक नहीं किया, मेरे से होता ही नहीं है, बता दूं, पेपर नहीं मैंने कभी चेक किया, मेरे में हौसला ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबको पास कर देना, और हमारे स्कूल का जो ग्राफ है ना वो नीचे गिर जाता है, मेरे में जरूरत नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकती। और मैं उन सब की इतनी मशकूर होती हूँ कि जो पेपर्स चेक करते हैं, मेरे लिए वो लोग इतने अहम है, सिखाया वैसे है चेक करना, रीचेक भी की है लोगों के जब वो करते हैं, यदि आप ये कह सकते हैं कि नंबर नहीं कभी मैं अपने हाथ से दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने नंबरों के काबिल हैं। ये सब साध्वी है, आपको इसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा, तमगा कब मिलेगा, कोई सोने का गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर मेडल कब मिलेगा, जब कौम फानजिर के दर्जे पे खड़े होंगे। मेरी अपनी नफ्सियात हो सकती है, लेकिन मैं इस पे बड़े दिल से मुतमईन हूँ कि जिन्होंने ये कोर्स बहुत अच्छा किया होता है ना, अल्लाह उनको रोक लेता है, जाने नहीं देता। जिनको सबक याद था उनको ही नहीं छुट्टी मिलती। आप में से जो इससे रुक जाएगा ना, आप इस कुरान को छोड़ नहीं सकते, मेरी नजर में उनके प्लस 100 है। कुरान पढ़ के आप इस कुरान को कभी जिंदगी में छोड़ने का तसव्वुर भी ना करें तो आप फर्स्ट है। ये आपका ऑक्सीजन मार्क्स बन गया क्या? ये आपको अपना एक एक्स्ट्रा बेबी दिखता है क्या? ये कुरान आपकी जिंदगी में इतना अहम हो गया कि आप इसके लिए किसी प्यारे को नाराज कर सके, किसी खुशी को छोड़ सके, कुर्बानी दे सके, हिजरत कर सके? नहीं, ये काम करेंगे तो बात बनेगी। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है? आप लोग ही लिखें हाँ जरा कि आप सवील उल्जन्ना करके आगे क्या करना है, सब लिखें। सर्टिफिकेट नूरुल नूर और भी लिखे, सब लिखे। नेक्स्ट कोर्स कुरान का कुछ, अच्छा जी, और तबलीग करनी है। आप में से किसी ने ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने पढ़ाना है? कितने लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ लिया अब बस हम पढ़ाने लगे हैं, जी, पढ़ने के बाद अब आपने पढ़ाना सीखना है। तो अक्सर जुमला बोलती हूँ कि पढ़ने और पढ़ाने के बीच में तरबियत है। तज़किया कुरान के जरिए होता है, तरबियत काम करने के दौरान होती है। आपका ये जो नूरुल नूर कोर्स अब आगे आएगा, ये सुवीलुल जन्ना से भी अहम है। जैसे कभी आपने किसी को मेडिकल का स्टूडेंट देखा हो, तो जो शुरू के 4 साल के बाद 3 साल शायद होते हैं, क्या बोलते हैं इधर उसको, इंटर्नशिप बोलते हैं, हाउस जो पाकिस्तान में बोलते हैं इसको, बाहर कुछ और कहते हैं इसको, इसके बगैर वो आपको कोई क्लिनिक खोलने देते हैं। ये सर्टिफिकेशंस मिलते हैं ना। अल्लाह ताला ने आपसे जो काम लेना है ना, वो तो शुरू हो चुका है। मजे की बात बताऊं कि अभी आप अगर एक लफ्ज भी नहीं बोले ना, तो आप टीचर बन चुके हैं, आपके घर वाले गवाह हैं। और पता नहीं क्या जबरदस्ती करके उनसे ली हैं आप लोगों ने शेयरिंग्स, या उन्होंने दिल से दी हैं, लेकिन आपके सबसे बड़े गवाह घर वाले हैं। मैं तो आपसे उस दिन खुश होंगी जिस दिन आपके घर वाले आपको कहेंगे वाह मजा आ गया, आपने ये कोर्स किया। इल्ला माशाल्लाह, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है। और अगर आप कहेंगे नहीं अभी तो लड़ाइयाँ ही बड़ी लगी हुई हैं, तो फिर कोई ना कोई बात है, आपने कोई जल्दी की है। करें क्या, अब आपने इंतजार करना है, कुरान पढ़ लिया पढ़ाना है, कुरान पढ़ लिया अब तबलीग करनी है। लिखिए सवाल, लिखे अपने आपसे कैसे करूँ, अब आगे क्या करूँ। और मुझे स्टूडेंट्स के वो जुमले भी याद आ रहे हैं कि सुवीलुल जन्ना में इतना कुछ पढ़ लिया है, तब आगे हम पता नहीं क्या पढ़ेंगे। यानी गोया के सारा कुछ पढ़ लिया, तब आगे तो कोई पढ़ने वाली चीज ही नहीं रह गई। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, अपनी जात से काम शुरू करें। आप अपनी टीचर बनी है, अपनी मुहासिबा बनी है, अपने आप को नसीहत करें, अपने ऊपर नजर रखें, चेक एंड बैलेंस देखें। एक पारे से शुरू करके दूसरे पे आपको इंशाल्लाह जो नूरुल नूर कराया जाता है, तो उसमें यही कुछ करवाया जाता है जिसमें आपकी मदद की जाती है। वो अभी मैं इस वक्त डिटेल्स नहीं बता रही, लेकिन आम तौर पे सबसे पहले सख्ती करनी है, मुहासवा करना है, उजुब से बचाना है, तो अपने नफ्स को बचाइए। फिर आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग, बच्चे, ससुराल, दोस्ते, नौकर, गली मोहल्ला, उनके लिए दीन को खूबसूरत बनाइए। आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका चलना फिरना महजब हो। खुशी नहीं बनना, रशी भी नहीं होना, एंग्जाइटी के बिना मरीज बन जाए, घबराहट भी नहीं, फतवे नहीं देने, ताने नहीं देने, पहले आपने सब्र करना फिर दूसरा करेगा, राबिता और नरम और दिल में उतरने वाली बात करें। फिर आप देखिए कि जब आप सच्चे होते जाएंगे ना, तो आपके और आपके घर वालों के बीच के फासले खत्म होते जाएंगे। आपको यकीन है कि मैंने जन्नत में जाना है, आपके घर वाले आपको कभी नहीं रोक सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुसलमान फैमिलीज में अपने दिल से खुरच के निकाल दें कि हमारे घर वाले, मुंह पे भी नहीं लफ्ज आता लेकिन चले, गुनाहगार हैं, मेरे शौहर नमाजी नहीं है, निकाल दें दिल से। वो जो भी है आपने नहीं सोचना, अपने रिश्तों की मिठास और अपनी मोहब्बत और अपनी नरमी के साथ दिलों को जोड़िए। अभी आप टीचर नहीं बन सकती, ये सुवीलुल जन्ना आपको उस्ताद नहीं बना रहा। मत अपने शौहर की उस्ताद बनिए, बच्चों की उस्ताद भी नहीं है, आप अपनी बनिए, इंशाल्लाह वक्त के साथ आसान होगा। हाँ, एक चीज जो कुरान पढ़ने के बाद सोने नहीं देती, वो क्या है, कौम फांजर, एक आग लग जाती है अंदर। पहले अपनी तो सफाइयाँ, फिर घर वालों के ऐब दिखते हैं तो उनकी सफाई, फिर भाई बहनों की, फिर दोस्तों, यानी ये वो आग है जो बुझती नहीं है मरने तक। कोई काम अच्छा लगता ही नहीं है इसके बाद, इंतजार, तड़प, आग लगी हो तो आराम से कैसे बैठे, लोग जहालत के अंदर है तो हम कैसे रहे। तो आपने, मैंने अभी जुबान से कुछ नहीं कहना, तानों से, हाथों से, आंखें मटका मटका के बोल बोल के कुछ नहीं कहना, अभी खामोश हो। आप सोचे आप गूंगे हैं, अपने ऊपर अमल कीजिए, अपने आपको और अच्छा बनाइए। और दाल नहीं गलती ना तो उसको और गलाते हैं, फिर ना भी हो ना फिर उसको घोटते हैं, मुलायम करते हैं कि एक दफा ये रच बीच जाए। ऐसे बन जाइए कि लोग आपके टेस्ट को फील करने लगे। और ये कभी नहीं हो सकता कि गुलाब हो और उसमें खुशबू ना हो। हाँ, प्रैक्टिकली आपने हमने इंशाल्लाह दिल में तड़प कर दिया। बस अब आप देखिए कि आपको कहा जा रहा है कि आपने अगला कोर्स करना है नूरुल्लाह नूर के नाम पे, तो क्यों करना है, क्या मकसद है? पहली बात है शमा जलती रहे ना तो रोशनी देती है, नरम भी रहती है। मोमबत्ती कैंडल फूक मार के बुझाइए जरा तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और टेढ़ी थी तो टेढ़ी ही जम जाएगी। अपनी क्षमा बुझने नहीं देनी, इसमें आपकी अपनी भी जिंदगी की बका है। फिर दीन का काम वो करना है जो आज नहीं बल्कि मेरे बाद भी और पहले। आपको नूरुल्लाह नूर में तदरीजन सिखाया जाता है। देखिए अल्लाह की रहमत से मुझे बहुत ही लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं अभी इस पिछले हफ्ते में देखूं तो मैंने 3-4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले लोगों को मिली हूँ और उनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और हर जगह सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से जाती हूँ कि भला मुझे भी तो मिले कि लोग अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मैं भी तो देखूँ क्या हो रहा है। तो आपने इंशाल्लाह अपने दिल में इखलास और तड़प रखकर लोगों को इंतजार करना है, कोई ग्रज, कोई गुस्सा, कोई गिला रख के नहीं करना। और ये याद रखिए कि दीन के काम में कुर्बानी और हिजरत करनी पड़ती है। इससे फिर अपनी दीन की कुर्बानी, अपने टाइम को खुद मैनेज कीजिए, और इसके बाद आपको कुछ और मिले ना मिले, एक बात बता देती हूँ, दिल का सुकून जरूर मिलेगा। दाई के दिल के अंदर अल्लाह एक ऐसा गहरा सुकून डाल देता है जो असल में दुनिया में जन्नत की बिशारत बन जाता है। रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन होगा कि जब आपने 2-2.5 साल लगा लिए तो अब आपने और क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। उसका जवाब कि अधूरी चीज़ पूरी से कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अभी एक लेयर पूरी हुई है, आप देखिए केक है ना, कितनी लेयर्स लगती हैं फिर टेस्ट आता है। अभी आपकी लेयर्स लगेंगी इंशाल्लाह ताला। आपने इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेकर अभी अपने अखलाक को मज़ीद अच्छा करना है। एक उस्ताद थे तो वो किसी को यही कह रहे थे कि घर वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो, बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ अरसे के बाद वो शख्स मिले, कहने लगे आपके कहने पे इतना प्यार मोहब्बत ये कुछ दिए, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि डोज बढ़ा दो, मिकदार बढ़ा दो, हमने जो दी होती है वो भी वापस ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रहना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तेज़ चलती ट्रेन के बाद अगर गाड़ी रुके ना तो एकदम झटके से रुकती है। तो आपने अपने इस वक्त पिछली चीज़ें जो आपकी कमी है उसको पूरा करें। यकीनन आपको कुछ ग्रेस टाइम दिया जा रहा होगा जिसमें आपकी कोई पेंडिंग वर्क है वो पूरा करें। मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप अब से लेकर रमज़ान तक का गोल बना लें, या ज़ादुल ख़ैर यानी प्रेप रमज़ान से पहले पहले जितनी जल्दी अपनी पिछली चीज़ें छुट्टी भी पूरी कर लें, एक नया सफ़र शुरू करें पिछला पूरा करने के बाद। यानी आप गो थ्रू कीजिए, खुद जाकर अपने नोट्स देखिए, अपनी चीज़ों को देखिए, वरना बाद में कई चीज़ों के फिर मसले सामने आ जाते हैं। फिर इसी तरह से बाज़ लोग गम बहुत मनाते हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्या करूं, मैं तो निकम्मी हूं। नहीं, मुस्तकबिल का खौफ और माजी का गम छोड़ दें, बेअमली और लंबी उम्मीदों को छोड़ दीजिए। और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको कि अपने घर वालों को अपना मुआविन बना लें। रेजिस्टेंस कब आती है, जब आप एक तरफ गाड़ी का रुख करके फिर रही हैं और आपके घर वाले दूसरी तरफ की बोगी में बैठे। आप देखिए ट्रेन के 2 इंजन होते हैं, किधर एक किधर, जिस तरफ गाड़ी चलती है ना उधर का इंजन चला देते हैं, क्योंकि ट्रेन ने मुड़ना तो नहीं है ना गाड़ी की तरह। उन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं जिधर आप अकेले चल रहे होते हैं। ये अल्लाह ने आपको कुरान से सिखा दिया कि आपने इंशाल्लाह अपने घर वालों को साथ लेके चलना है, और खुदा न खास्ता अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं तो बदलिए। कुछ लोगों को बना हुआ मिल जाता है और कुछ को बनाना पड़ता है। एक जुमला लिख लें कि इस रस्ते की रुकावटों में एक बहुत बड़ी रुकावट क्या है कि कुछ को माहौल बनाना पड़ता है। बीबी आसिया को याद कर लें, हज़रत इब्राहिम को याद कर लें, बाबी दूसरी तरफ है, औलाद को याद करें, हज़रत नूह को याद करें, मूसा बचपन में भी पिछड़ गए, हज़रत यूसुफ पिछड़ गए। तो आपने इंशाल्लाह हर चीज़ को देखना है। सब्र और इस्तकामत इस सफ़र का ज़्यादे रहा है, और नज़्म व ज़ब्त कामयाबी की कुंजी है। इंसाफ के साथ चलते जाएंगे, बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ कि अभी आप कच्चे फल हैं, जब आम लगते हैं तो आपके घर के आंगन में एक दरख्त हो तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे आम होते हैं ना, अम्बियाँ, केरी या अम्बी कहते हैं उसको, आप उसको ज़रा सा भी जाके खींचे ना तो नहीं टूटती, बड़ी पक्की होती है, क्योंकि अभी वो उस बच्चे की तरह जो माँ का फीटस है और उसको अपनी माँ से बहुत खाना चाहिए, वो फ्रूट अभी दरख्त से अपनी जड़ों में से चीज़ें ले रहा होता है। फिर ज़रा सा और वो गुजरता है ना तो वो आम पकने लग जाता है। अब देखिए कि जब बिल्कुल मीठा पका हुआ आम होता है ना, कभी आप टच करें ना खुद ही हाथ में आ जाता है। फितरत का असूल है, जब कोई चीज़ पूरी पक जाती है ना तो फिर वो जुदा कर भी दी जाती है तो वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन कच्चा आम गिरा हुआ पेटियों में डालकर उसको पैल भी डाल लें, वो टेस्ट कभी नहीं आता। तो एक जुमला लिखिए, रूट टू फ्रूट, जड़ से फल बनने के रास्ते में सब्र और इस्तकामत होती है। अभी हम कच्चे हैं, आपको लग रहा है कि आप पक गए हैं लेकिन अभी आप पके नहीं हैं। इसके लिए कुछ इमेजेस आपको दिखाती हूँ कि आप अपने आप को चेक कीजिए इन सारे मराहल में से कि आप कहाँ खड़ी हैं। सारी रुकावटें रास्ते की आपके लिए थी कि नहीं, आपने उनको पूरा कर लिया कि नहीं, गुजर गए उसमें से कि नहीं, फिर आप इसमें से आप अपने आप को किस लेवल पर लगाते हैं। देखिए, ये इल्म और अमल का सफ़र बिल्कुल ऐसे है जैसे आटा गूंदते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है तो आटा अच्छा गूंदता है। कभी कभी कोई नया आटा गूंदने वाली हो ना तो सारे पानी इकट्ठा डाल दें तो कुछ भी नहीं बनेगा, रोटी नहीं पकेगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी आपके अंदर जाएगा और हाथ लगेंगे, अभी खूब अच्छी मुक्की लगेगी, गूंदेंगे तो फिर आपके अंदर रंग आएगा। लेकिन जब कच्चा फल किसी के सामने आप पेश करेंगे तो वो कड़वा होगा। लोग कहते हैं जी आप तो बड़ी बातें करते हैं, ईमान का फल इतना मीठा होता है, मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती, जन्नत अच्छी, हमारी तो बुरी हो गई, लड़ाई नहीं चाहती। तो वजह यह कि आप अभी कच्चे हैं। आप में से जो चाहता है कि वो पके वो क्या करें। रूट टू फ्रूट के लिए आपके सामने कुछ चीज़ें, आप देखिए कि तस्वीर में एक तरफ कुछ बीज है, अब आपको नहीं दिख रहा तो नोट बाद में देख लीजिएगा। पहले एक बीज था, आप एक छोटा सा बीज थे, कुरान पढ़ने के दौरान आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डला। सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे तो एक और, दूसरी में क्या हुआ कि आपकी थोड़ी सी जड़ निकल आई। कभी आपने कुछ डाले या कोई चीज़ भिगो के रखी हो ना तो आप देखेंगे कि उसी के अंदर कुछ दिन के बाद जड़ें निकल आती हैं। और आई विश कि मैं आपको वो पिक्चर दिखा सकूं जो कल हमने आपके अलबरका बिल्डिंग में सब्जियों में से गाजर मूली, उसके अंदर इतनी छोटी छोटी जड़ें थी, यदि वो मैं दिखाऊंगी किसी क्लास में इंशाल्लाह, लेकिन आज इधर नहीं है आपके लिए। तो जब आप अगली स्टेज पे आए ना तो आप देखेंगे कि आपकी जड़ के साथ थोड़ा सा पीला सा तना भी शामिल हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पत्ते निकलते हैं, नीचे जड़ें बढ़ती हैं तो ऊपर सब्जा बढ़ता है। ये लिख लीजिए, जितना डीप डाउन आपके दिल में तवक्कुल, ईमान, शुक्र, अल्लाह ताला के साथ मामला अच्छा होता जाएगा ना, आप उतने खूबसूरत होते जाएंगे। और जब आप नीचे से जुड़े रहेंगे ना تو پر بھی جڑیں گے. اسی کو کہا تھا کسی نے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ نے کبھی اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہونا. ایک بہت بڑی غلطی کچھ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, مجھے یقین ہے آپ نہیں کریں گے, اور وہ غلطی پتہ کیا ہوتی ہے کہ وہ درخت سے تعلق توڑ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس کام پورا ہو گیا اب چھوڑ دیں. میں ایک چھوٹی سی مثال پوچھتی ہوں, آپ میں سے جو شادی شدہ سسٹرز ہیں, شادی کے بعد میکے سے تعلق ٹوٹ گیا تھا؟ کتنا ان نیچرل گانا شادیوں پہ گایا جاتا ہے کہ میکے کی کبھی یاد نہ آئے, سسرال میں اتنا پیار ملے. میں کہتی ہوں سسرال سے پیار چھوڑیے, پھولوں کے ہار مل جائے, میکا پھر بھی یاد آتا ہے. میکا 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 ہوتا ہے. اور یہ بہت بری دعا ہے کہ بابل کے گھر سے لیتی جا دعائیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یعنی یہ فیلنگ دینا کہ سسرال میں رہنے کے لیے میکے والوں سے تعلق ٹوٹ جائے اور میکے والوں کی محبت دل سے چلی جائے, یہ انتہائی ظالمانہ چیز ہے. یہ قرآن جدھر سے آپ نے پڑھا ہے, یہ نام آپ کا میکا ہے. جائیں پھلیں پھولیں, آپ کو اپنے گھروں کے بھاگ لگے, لیکن تعلق نہیں توڑنا. آدھے رہ جائیں گے, کچے رہ جائیں گے. یہ ابھی جو آپ کو تصویریں دکھائی ہیں نا کچھ, تو جب آپ اپنی جڑ کے ساتھ جڑے رہیں گے نا تو آپ پھیلیں گے. جڑ کو اٹھا کر ادھر سے اٹھا کے ادھر لگائیں, ادھر سے لگا کے ادھر لگائیں نا, ہوا لگ جاتی ہے. ہمارے بڑے پکتے چاولوں کا کبھی دم نہیں کھولنے دیتے تھے, ہانڈی پک رہی ہے اس کا ٹکن نہیں کھولنے دیتی تھی ہماری نانیاں دادیاں, کہتی تھی خوشبو تو ساری اڑ گئی. تو اپنی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے. جزاکم اللہ خیر.